उनके लिए कोई पुंज पुंज इत्यादि की जरूरत नहीं है। जैसे नंद बाबा यशोदा के लिए तपस्या के द्वारा वो कृष्ण मिले हैं ऐसा नहीं, पुत्र नहीं है, वो उनके नित्य परिकर हैं, माता पिता हैं, उनके साथ में लीला में अवतरित हैं। ऐसे ये गोप लोगों को कोई पुण्य से या साधन भक्ति से या प्रेमा भक्ति से वो नहीं मिले हैं, वो तो कृष्ण ही अपने कायव्यूह के रूप में उन परिकरों के रूप में खेलते हैं ऐसा था। और उसमें जो साधन सिद्ध हैं उनके लिए कुछ कहा जाए, ये भी प्रेममयी भक्ति रसिक वैष्णव की कृपा से या भगवान के हस्त की कृपा से वो तब वहाँ जाकर के बच्चे बन करके खेल रहे। तो वो कौन है? ऐसे सौभाग्यशाली जिस कृष्ण को उससे आते हैं वो कृष्ण कौन है उनके लिए था। तो सनातनंदन जैसे महात्मा स्वतान वो साधु हैं, वो लोग उनको ब्रह्मानंद के रूप में, ब्रह्म सुखानुभूति के रूप में प्रश्न ये उन्हीं के मुक्ति। और दास्य लोगों को देख रहे हैं क्या ये हमारे आराध्य देवता भगवान है, दास्य वाले हनुमान इत्यादि के रूप में। और साधारण व्यक्ति जो मायाश्रित है, माया के द्वारा जिनकी बोही बुद्धि हो गई है, वो लोग उनको नर बालक जैसे कंस जरासंध दुर्योधन इत्यादि देख रहे हैं, ये नर बालक। दूसरे एक तटस्थ होते हैं, वो अपराध नहीं करते, उनको सुंदर नर बालक के रूप में देखते हैं। और तीसरे होते हैं योग माया के आश्रित लोग, ये परम मुक्त, ये लोग उनको किस रूप में देखते हैं? चार रूपों में देखते हैं अपनी भक्ति के अनुसार, कोई दास्य प्रभु के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई
माता
वात्सल्य के रूप में, और कोई कोई देखते हैं विशेष विशेष प्रियतम के रूप में। प्रियतम के ऊपर में सनातन गोस्वामी ने विशेष कहा जो गोपियों के प्रियतम हैं, अर्थात ये गोपियां कृष्ण को देख रही हैं कि गोचारण करते हुए जा रहे हैं, सबसे आगे कृष्ण और बलदेव हैं, एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं, बंसी हाथ में है, मुस्कुरा रहे हैं, कटाक्ष के द्वारा देख रहे हैं, सखाओं के तरफ में, सखियों के तरफ में। उस समय ये बंसी बजा रहे हैं, स्मित हास्य कर रहे हैं, उस समय में ये कर रहे हैं, ये वयस्यी अर्थात गोप बालकों के साथ में ये जा रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये गोपियाँ ऐसे कृष्ण का जो दर्शन करना है। ये कृष्ण कैसे हैं? मधुर रस के भी नायक, ऐसे गोपियों के भी प्रियतम जो कृष्ण हैं उनके साथ में ये खेल रहे हैं, ये विशेषता है। ब्रह्म सुखानुभूति और दासियों के भगवान और नरबालकों के भगवान से भी अधिक यहाँ पर ये विशेषता है। गोपियों की जो प्रियतम है उनके साथ में ये खेल रहे हैं, ये इनकी महत्ता सबसे इतना इनका सौभाग्य है। ये बात
नंदनंदन तात्पर्य और एक
और साधारण जितने लोग हैं नंद बाबा इत्यादि सब समय नंदनंदन देखेंगे, और जितने गोप हैं वात्सल्य वाले देखेंगे, ये तो सब सी बात। उसके अतिरिक्त भी उनके दास भी देखेंगे नंदनंदन के रूप में भी देख सकते हैं, सखा लोग भी देख सकते हैं, वात्सल्य वाले, किंतु वो गोपियां सब समय नंद किशोर के रूप में देख सकते हैं, उनका किशोर कृष्ण से ही संबंध। यत्पाद पांसुर बहु जन्म पृच्छत कृतात्म विजोगी भी अवतलभ्य सैव दिग्विषय स्वयं स्थित किं करण्यते दृष्टमहो व्रजोपशान यत्पाद पांसुर बहु जन्म पृच्छत। ये पुनः एक श्लोक उन्हीं के लिए बदला है, किम करण्यते, क्या वर्णन किया गया? जम नियम जो अनुष्ठान के द्वारा एकाग्र चित्त जो गोपीजन है, वो योगीजन है, बहुजन कृष्ण तपस्या, कृष्ण तपस्या करती हुई, जिनके पाद पद्म में लगी हुई चरण की धूलि को भी स्मरण नहीं कर सकते, लाभ नहीं करते, कौन? योगी लोग। जम नियम, आसन प्राणायाम, ध्यान धारणा, समाधि इत्यादि के द्वारा भी कठोर तपस्या करके भी बहु जन्मों में भी कृष्ण के चरण की संलग्न जो भूमि है उसको भी नहीं पा सकते, बहुत बड़े सौभाग्य की बात। वही भगवान ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजराज नंदन स्वयं जिनके चक्षुओं के सामने दृष्टिगोचर होकर के और उनके साथ में खेल रहे हैं, उन ब्रजवासियों की सौभाग्य की बात और क्या है? उनके साथ में खेल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, दिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, उनके सौभाग्य की क्या बतला है? अभी कई बार कौन पुराण है मरने के बाद में सुना है, गरुड़ पुराण कहीं हो रही होगी, उनकी कथा हो रही होगी, कहीं कुछ हो रहा होगा, कहीं सत्यनारायण की कथा हो रही होगी, कहीं कुछ हो रहा होगा, लोग सब सुन रहे हैं बड़े आनंद के साथ में। और कहा ये सुमधु भागवत है? तो संसार में सबसे सौभाग्यवान कौन है? जो भगवत त्रिमुख नहीं है और जैसे तैसे भगवान को मानते हैं, अन्य देवताओं को भी मानते हैं, वहां से आरंभ होगा। उन लोगों में भी एकांतिक जो विष्णु भक्त है वो शेष है, उन एकांतिक विष्णु भक्तों में भी नारायण के जो एकांतिक भक्त हैं वो शेष हैं, उन नारायण के एकांतिक भक्तों में से भी उनमें से यदि कृष्ण भक्त कोई है वो श्रेष्ठ हैं, उन कृष्ण के कोटि कोटि करोड़ों भक्तों में से एक कौन जो कृष्ण के प्रति अनन्य भजन करते हैं, ब्रजेश नंदन के प्रति, उनमें सबसे श्रेष्ठ भाष्य वाले, उनमें से भी श्रेष्ठ उनसे भी श्रेष्ठ वास्तव्य वाले, उनसे भी श्रेष्ठ गोपी भाव वाले मधुर भाव वाले, ये लोग सबसे श्रेष्ठ। इससे बढ़कर के और कोई परतत्व नहीं, परतत्व की यही पर सीमा है। उसी को ये कर रहे हैं, हम लोग इसकी महिमा नहीं जानेंगे, महिमा कब समझेंगे? यदि कोई आदमी कोयले की महिमा जानता है ना और उसके साथ में हीरे को दिया जाए तब कोयले की अपेक्षा हीरा की महिमा समझेगा? ऐसे नहीं समझेगा। इसलिए पहले इसकी समझाया, कोटि कोटि कर्मियों से एक वेद ज्ञान युक्त ब्राह्मण श्रेष्ठ, और उनसे भी जम नियम जो अनुष्ठान इत्यादि करने वाले जो हैं बिना खाए पिए हजारों वर्ष तक तपस्या, एक पैर की एक अंगुली पर खड़े हो जाते हैं, आंख ऐसे कर दिया है दोनों हाथों को और एक पैर पर खड़े होकर के बिना खाए पिए तपस्या करते करते हजार वर्ष हो गए। जैसे कि हिरण्यकश्यप ने कितनी वर्ष तपस्या की? 60,000 ऐसे बिना खाए पिए। और वाल्मीकि जी ने भी ऐसे ही तपस्या किया लाखों वर्ष। तब ये लोग क्या पाते हैं? कृष्ण के चरण कमलों के की जो धूलि है उसको नहीं पाते, क्या पाते हैं? विशेष विशेष अधिक से अधिक रूप में गर्भ दशाई विष्णु के परमात्मा रूप को योगी लोग अपने हृदय में उस परिमाण में ध्यान करते हैं, वो भी आभास। ये क्या चीज है? कृष्ण के की संबित और राजनी शक्ति जो है उसमें से जो चित शक्ति है अर्थात संबित शक्ति है वही चित कहलाती है, उसका आंशिक विकृत प्रतिफलन उसमें है, उसमें केवल आंशिक रूप में सत्य और आंशिक रूप में चित है परमात्मा में, उसको भी नहीं देख पाते हैं वो, क्या उसके आभास को चिन्ह मात्र रखेगा इतने दिनों के आभास चिन्ह मात्र के रूप में ये जो भी लोग पाते हैं, कहते हैं कि हमने क्या देखा, प्रकाश देखा और कुछ नहीं। तो ये लोग भी कृष्ण के चरण कमलों की धूली को भी नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसे जो भगवान ब्रजेंद्र नंदन है उनके भी मूल गर्भदशाई, उनके भी मूल करुणदशाई, उनके भी मूल महाशंकरसन, उनके भी मूल महाशंकरसन, उनके भी मूल बलदेव, उनके भी मूल उनका मूल का वो अनादि। तो वो ब्रजेंद्र नंदन जिनके आंखों के सामने खड़े होकर के उनसे खेल रहे हैं, कभी हार जाते हैं, कभी हरा देते हैं, कभी अपने कंधे पर बैठा लेते हैं और कभी उनके कंधे पर बैठ जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, उनके साथ में जूठा खा रहे हैं, खिला रहे हैं, उनके सौभाग्य की महिमा क्या। और इसकी टीका कर रहे हैं ये किसलिए बतला रहे हैं, ये कृष्ण की महिमा साधारण नहीं है। जो लोग उन कथाओं को सुन रहे हैं वो श्रोता भी साधारण नहीं है, यदि समझ रहे हैं तो इनको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। हम जो कृष्ण का भजन कर रहे हैं साधारण नहीं है, ऐसे भी यहाँ पर लोग होंगे जो कि कहने पर भी सत्यनारायण की कथा को नहीं छोड़ पाते हैं, वो कृष्ण की क्या को क्या समझेंगे। सत्यनारायण और ये कृष्ण में भी बराबरी समझते हैं। अच्छा एक बात बतलाओ, हम लोग इतने आदमी हैं, आप लोग विचारक हैं, बतलाइए ये पांच पेड़े और उसमें पांच दे दे दो वो क्या आजकल
गजक
गजक, और उसमें और भी कोई अच्छी से अच्छी खोए के लड्डू दे दिए और केसर युक्त एक एक ग्लास दूध दिया जाए। एक भक्त ने ये दिया अपने घर पर, भक्तों का खूब अच्छी तरह से सम्मान किया, और एक व्यक्ति ने केवल एक एक तुलसी दे दी। अब बतलाओ तो दोनों में महिमा किसकी अधिक है, वो पेड़े लड्डू दिया है इसकी महिमा है ना तुलसी की महिमा है पत्ते की, कौन अच्छा है। तो वो तो तुलसी के देने से वो बड़ा हुआ, लड्डू पेड़े की वजह से नहीं। यदि इतना सा तुलसी दे दिया तो उसकी महिमा बढ़ गई, और यदि दो तुलसी दे दे चार दे दे तो
जिसका लड्डू पेड़ा में मन है उसको भी अच्छा लगेगा, जो था भक्ति करना चाहता है तुलसी अच्छा लगेगा।
भक्ति का विचारक है वो देखेगा तुलसी को बढ़ा, जिसने सत्यभामा के सोने के जितने दिल थे सब कुछ बेकार के हो गए, एक तुलसी का पत्र चढ़ा दिया वो अधिक हार हो गया कृष्ण फल के दो। ये तुलसी की इतनी महिमा है। इसलिए कीर्तन को हरि कथा को या किसी चीज को भी इन चीजों से लौकिक चीजों से कभी मत देखना, नहीं तो इसकी भक्ति की महिमा उसके समझ में नहीं आया। एक स्थूल व्यक्ति है जड़ पदार्थ, यदि कोई एक तुलसी का पत्ता देता है समझो जो हमारा जन्म जन्म कृपा करो। इसलिए इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझ करके ये चलना चाहिए, और नहीं तो स्थूल चीजों में रह जाएंगे ये सब चीजें। इसीलिए इनकी महिमा बतलाई गई, ये भक्ति की महिमा। भक्त कौन भाई किन की महिमा बतला रहे हैं, उन बच्चों की महिमा बतला रहे हैं किनके साथ में खेल रहे हैं, जिनके चरण की धूली की धूली की धूली ये चित ब्रह्म है, आंशिक चित्त है, वो भी विकृत फलम जिनका आभास ज्योति के रूप में दिखता है उनको ही ये जो भी लोग नहीं पाते। किंतु कितना कठोर तपस्या करते हैं। एक अभी आदमी अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता है कि नहीं, यह रेलवे लाइन का जो पुल है उसके पास ही में कहीं पर करीब 5-6 दिन तक ऐसा ही हाथ किए हुए खड़ा था, ऐसे 5-7 वर्ष की 10-15 वर्ष ऐसे ही खड़ा किया, उन घिराता ही नहीं, हाथ खुल गए हैं, खुल गया तब ऐसा। कोई यदि 1,00,000 वर्ष तक ऐसे ही हाथ खड़ा करके कोई रहे तो उसको कृष्ण मिलेंगे कि नहीं? नहीं मिलेंगे। किंतु 1,00,000 वर्ष तक ऐसा करना कितना कठिन काम है। जो अपने चित्त वृत्तियों को जो वायु से भी अधिक चंचल है, चित्त की वृत्तियां जरा मिला करके देखो, 1 मिनट के लिए रोक करके रखो तो अपने मन को नहीं ला सकते। वायु को बांध लेना कठिन है, सहज है, किंतु मन को रोकना बड़ा भारी कठिन है। कैसे? इस चीज को समझो, प्राणवायु है ना जो आती जा रही है, सांस प्रश्वास, इनको 1 मिनट के लिए रोको तो 1 मिनट घड़ी की तरफ में देखो। अच्छा 1 मिनट रोक लेते हो, 2 मिनट रोको तो बस हो गया, 10 मिनट रोको तो इसको भी रोक सकते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो अपने प्राण वायु को रोक करके 1 मिनट तक रोक सकता कौन? मधुजी जी ने रोका। किंतु मैं ये एक बात थी कि उसमें नारायण को देख रहे थे इसलिए रुक गया, और यदि वहां पर नारायण को नहीं देखता ना, आश्रय नारायण नहीं होते तो वो नहीं रुकता। ये भी साज है, इसको भी आदमी कर सकता है, इसको भी कर सकता है। हिमालय में ऐसे लोग हैं जो अपने प्राण वायु को 5,000 वर्ष तक रोक करके रख दिया, ऐसे लोग हैं। किंतु इन लोगों का भगवान से कोई भी संबंध नहीं, ये करोड़ों जन्म में ऐसा करके भी उस भगवान को नहीं पाएंगे। इनको क्या मिलेगा अधिक से अधिक? ज्योति कुछ दिखेगी, ब्रह्म ज्योति थोड़ी सी देख जाएगी बस। और ये ब्रह्म ज्योति क्या चीज है? कृष्ण के अंशों के अंशों के अंशों के विकला के कला के विकला के सुकला के वो है कहां? ये लोग किसके साथ में खेल रहे हैं? ऐसे लोगों के साथ ही। इसलिए आप लोग कैसे व्यक्ति की आराधना करने जा रहे हैं? आपके इष्ट देव कैसे हैं? उसमें सत्यनारायण ब्रह्म से भी नीचा है, उसमें साफ काम उपासना है, उसे भक्ति कभी नहीं हो सकती। लाख जन्म तक कोई सत्यनारायण की कथा कहेगा सुनेगा कभी नहीं, उसमें क्या मिलेगा? पुत्रम देही धनम देही जसो देही सुंदरी भार्यां देही सुंदरम वरम देही, बस यही तक मिलेगा। भगवान की कृपा उसमें नहीं मिलेगी, किंतु क्यों किया? व्यास जी ने पुराणों में इसका उल्लेख क्यों किया? जा करने के लिए जो एकदम नास्तिक है, जो कुछ भगवान नहीं मानते हैं कुछ, वो धन के लिए भी तो भगवान से करेंगे। इस दृष्टि से लगा किसी तरह से बहके हुए लड़के को, बहके हुए संतान को थोड़ा सा काम मिला, इसलिए ये सब उपासनाएं सकाम उपासनाएं। चित्त कुछ शुद्ध हो जाएगा और यदि साधनों का संग हो जाएगा तो भक्ति उसको मिल जाएगी और भगवान को ये समस्या पैदा हो। हम लोग भी ऐसे ही बातें देते, धीरे 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 साधनों का संग मिलता गया, सबको छोड़ते गए, यहाँ तक कि जितने अवतार हैं सब अवतारों की भी, देवताओं की तो बात ही क्या, सब अवतारों को भी छोड़ करके अनन्य रूप में कृष्ण का शरण लिया। इसको मैं सबसे अच्छा समझ, अब गुरु जी का जब से संग हुआ तो आज से नहीं, इससे भी एक उपास्य बड़ा है कृष्ण से भी। वो क्या है? कृष्ण के जो उपास्य हैं वो ही हमारे उपास्य हैं, वो उपास्य श्रीमती राधिका जी। इसलिए उन लोगों को समझना साधारण खेल नहीं है, इसीलिए ये सब इतना कह रहे हैं, इसलिए इस सबको भक्ति को समझना चाहिए, भक्ति संबंधी भगवत संबंधी वस्तुओं को समझना चाहिए। अन्न दाल तरकारी पूरी मालपुआ खीर कचौड़ी मन भोग और पेड़े जिसके संबंध से पवित्र होते हैं, किनके संबंध से?
तुलसी के संबंध
से। तो उस तुलसी की महिमा कितनी है समझो, इतनी महिमा है जी हमारे अद्वैत आचार्य ने देखा जी भगवान को कैसे बुलाए, हमारी बात कैसे सुने, किस चीज के लिए बात। मैंने कहा जी बस तुलसी के द्वारा ही भगवान अपने को बेच देते हैं, बस तुलसी लिया और भगवान के चरणों में अर्पित करके कहा जी प्रभु मैं आपको ये तुलसी पत्र अर्पित कर रहा हूं, आप यदि नहीं आए हमारी बात नहीं सुना तो मैं विश्व को ध्वंस कर दूंगा। भगवान का आसन हिल गया इसलिए उनका नाम हो गया नारा, भगवान का आसन ही हिला दिया तुलसी पत्र के बल। इसलिए भगवान और भक्ति वैष्णव भक्त इनके संबंध में ध्यान रखें, ये चेतन में कीमत बता दें, इनकी महिमा हमारे यहां नहीं समझ में आती है, संसारिक चीजों की महिमा आती है। अभी कोई कह दे साधारण लोगों को इसमें से जो हर नाम दिए हमने तुमको अभी 10 लाख रुपया देंगे, 1 लाख रुपया देंगे, तुम जरा गणेश की पूजा करो आज के दिन, तो व्यक्ति क्या करेगा, क्या हर जगह गणेश की पूजा कर दें। किंतु एकांती कृष्ण का भक्त किसी स्थिति में नहीं करेगा, चाहे मर जाएगा मिट जाएगा जो कुछ हो जाएगा। एक भक्त था भगवान का, उस समय दक्षिणात्य में एक राजा थे। देखा जी ये सबको वैष्णव बना रहा है, उन्होंने उसको बुलाया आज शंकर जी की पूजा यहां पर करना होगा, और तलवार लेकर के खड़ा हो गया, यदि तू नहीं करेगा युद्ध करता है नहीं करूंगा तो अभी तलवार दूंगा। उन्होंने देखा भाई ये भगवान का भजन करने का जन्म है, मैं क्या यदि मैं भजन करूंगा आज नहीं इनकी पूजा करता हूं तो ये काट देगा। अच्छा काटेगा तो पीछे पहले हम चतुराई करके जरा देख लें। पशु ने अच्छा भाई मैं पूजा करता हूं, ऐसा कर करके पुष्प चंदन ये सब ले करके और पूजा कर रहे, पूजा कर रहे हैं मनी मन में, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय नमः इत्यादि एतत्पद्यं कृष्णाय नमः, ओम नारायणाय नमः पूजा कर रहे हैं। वो पूजा में निविष्ट हो गया नारायण की पूजा में, इतने में मुख से निकल गया ओम नारायणाय नमः, वो राजा को भूल गया, राजा तलवार लेकर के निकल गया, अरे तू नारायण की पूजा कर रहा है, वो सोच रहे ये कह रहे थे कि ये देवता तो उनकी विभूतियां हैं, ये तो भगवान नहीं है, किंतु विभूति के माध्यम से भी उनको हम पहुंचाएंगे नारायण के ही, इसलिए विभूति को भी ऊपर से दिखला रहा था, अब देना चाहिए उस शंकर जी के उस पर, वो न दे करके पास में गिरा रहा है ओम नारायणाय नमः, बस वो बिगड़ गया। कौन इसकी पूजा करता, बस तलवार था, इतने में वो जो विग्रह थी फट गई और उसके भीतर से और राजा को कुष्ठ व्याधि न कि क्या क्या कर दिया। इस प्रकार के सब हमारे उपास्य देव ऐसे हैं, कोटि कोटि दुर्गा कोटि कोटि शंकर कोटि कोटि ब्रह्मा इत्यादि सबको वर दे दे और उनको जो चाहे उनको दे, उन्हीं के नाम के बल से ये लोग दूसरों को ये फल देते हैं, इसलिए एकांतिक वैष्णव इस चीज को समझता है। आज मैंने स्पष्ट रूप से ये सब कहा, ये प्रसंग आ गया ही, नहीं तो बहुत से लोग दुखी हो जाते हैं, दुखी होने की बात नहीं, ये बात परम सत्य है, इसलिए एकांतिक होना चाहिए। इसलिए पहले उनकी महिमा बतलाई योगियों की, योगी लोग क्या करते हैं मन को एकाग्र करते हैं, जो मन एकाग्र करना बड़ा भारी कठिन है, जरा कर करके देख लो तो एक सेकंड के लिए नहीं हो, यहाँ तक कि प्राण वायु को जो रोक सकते हैं ये लोग, किंतु इन लोगों के लिए भी करोड़ों वर्षों में ऐसे दुष्कर्ता जो के द्वारा कठिन तपस्या के द्वारा कृष्ण की चरण की धूली माने क्या, धूली माने यहाँ क्या, कृष्ण के जो अंश हैं उनके अंश के जो कला हैं उनके कलाओं के जो विकला सुकला है उनके लिए यहाँ पर चरण की धूली, उसी को नहीं प्राप्त कर, उसकी बल्कि ज्योति को प्राप्त कर, बस कितना ही समझो। और वो भी ज्योति क्या है, भगवान की सच्चिदानंद में से चित्त का आंशिक फलन वो उस रूप में। तो वो कृष्ण कैसे है भाई, उन कृष्ण के साथ में ये खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, ये कैसे हैं। इसलिए कृष्ण को समझना चाहिए ये कृष्ण साधारण नहीं है, समस्त अवतारों के भी अवतारी हैं, समस्त अंशों के भी पूर्ण रूप में अंशी हैं, वही सबके कारण हैं, सबके आदि हैं और स्वयं अपने अनादि और दूसरों के आदि हैं। ये मथुरा में आने वाले ये साधारण नहीं है और ब्रज में, इनकी उपासना इतनी बड़ी चीज है, हम लोग नहीं समझेंगे, कौन समझेगा, समझेंगे नारद प्रकृति उद्धव इत्यादि लोग, ब्रह्मा इत्यादि लोग, शंकर इत्यादि, ये लोग कुछ समझेंगे। अब वो टीका में व्याख्या बतलाएगी, कितना बजेगा, छह बज गया है, तो आज ही तक है, कल इसके बाद में हम बतलाएंगे। पतितानं पावनं नमो महावदन्याय
अवतरण।
तब इन वर्ण के दृष्ट तमो इन वर्ण के दृष्ट तमो जनों का सन दृष्ट तमो इन वर्ण के ब्रजवासियों की का जो सौभाग्य है उसका कौन वर्णन कर सकता है, कैसे वर्णन कर सकता है। पहले एक एक पेड़ की आकाश की किरणों की यमुना की सुख सत तारिका की वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन। अब यहाँ पर सखाओं के भाग्य की महिमा की कृष्ण के कृष्ण का ऐसा महात्मा किसी और संप्रदाय में वर्णन किया गया है कि नहीं, ऐसा किसी भी संप्रदाय में नहीं। जी का प्रबंध पढ़ रहा था तो उसने देखा और संप्रदाय भेद का कारण क्या है,
उपासक तो भेद
परस्पर संप्रदाय क्यों होते हैं, कितने अभी कोई कहते हैं उपास्य तत्व की के भेद से किया, कोई कहते हैं साधन
साध साधन
साध साध इन तीनों के भेद होने से संप्रदाय ने भेद किया, कोई कहते हैं कि पर तत्व के साथ और जल के भेद के कारण ही मैंने इस विचार पर निर्भर करता है कि संप्रदाय अलग है कि और ब्रह्म के साथ में शक्ति से उत्पन्न जीव और जल इन दोनों के साथ में भगवान का क्या संबंध है, इसके ऊपर में निर्भर करता है संप्रदाय की
और
ब्रह्म के साथ उनकी शक्ति से उत्पन्न जीव और जगत के साथ में ब्रह्म का संबंध के ऊपर में ये संप्रदाय का भेद विचारित होता है। और उनकी शक्ति से उत्पन्न जीव और जगत इसमें भेद संबंध में क्या तात्पर्य है इसके उपाय होता है। और सचमुच में किस चीज के ऊपर में निर्भर है, किसी का नाम है अद्वैत, किसी का नाम है
विशिष्ट,
किसी का नाम है विशिष्ट, किसी का नाम है शुद्ध द्वैत, किसी का नाम है शुद्धाद्वैत, किसी का अचिंत भेद, ये किस पर निर्भर हुआ। ऐसे मालूम होता है ब्रह्म के साथ में जीव और जगत का जब भेद नहीं हुआ तो अभेद हो गया, ब्रह्म के साथ में जीव का और जगत का विशेष संबंध है तो ये विशिष्ट अद्वैत है और अद्वैत रहने पर भी विशेष संबंध एक है, विशेष और विशेषण का। और ब्रह्म के साथ में जीव का अत्यंत जीव और जगत का अत्यंत भेद होने पर भेद बाद और इन्हीं के साथ में अचिंत भेद और अभेद रहने पर ये ऐसा कुछ दार्शनिकों का आधुनिक लोगों का ऐसा अब यदि हम चलते हैं ये उपास्य पर तो उपास्य पर के भेद होने से ही संप्रदाय में भेद हो जाएगा। यदि इस विचार को ग्रहण करते हैं तो श्रीवास पंडित का मुरारी गुप्त का अनुपम जी का रूप गोस्वामी के साथ में इस विचार में भेद ही था महाप्रभु से नौका भेद किंतु तभी एक ही संप्रदाय यदि कहो ये सुंदरानंद विद्या विनोद है उनकी कोई पुस्तक मत पढ़ना नहीं तो सरलमति होने के कारण में चौपट हो जाए आजकल यही लोग पढ़ते उन्होंने ये कहा गौड़ीय संप्रदाय में ब्रह्म के साथ में और जीव और जगत के साथ में अभेद ही है यही प्रधान है कहीं कहीं पर भेद देखा जाता है किंतु वो
प्रतीतियता भी कम है
इसलिए हम लोग भी अभेदवादी हैं अद्वैतवादी हमारे गुरु जी बहुत बड़े सारे दार्शनिक थे इन्होंने इस विचार को खंडन किया नहीं उन्होंने बताया बदंति तत्व विदः तत्त्वं जगज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति तद्यते तत्वज्ञानियों का यह तत्वज्ञानी लोग कर्म तत्व को ही अद्वैत ज्ञान तत्व मानते उसकी प्रतीति तीन रूपों में होती ज्ञान नेत्र से देखने से ब्रह्म योग नेत्र से देखने से परमात्मा और भक्ति नेत्र से देखने से वो भगवान भगवान में भी भगवान और स्वयं भगवान इत्यादि का वैशिष्ट है ऐश्वर्य नेत्र से ऐश्वर्यमयी भक्ति से वो नारायण और माधुर्य नेत्र से
गजेंद्रनंदन
के रूप में वो भी तो ये सब भेद के कारण नहीं है ये वैशिष्ट है भेद दो पृथक सत्ताशील वस्तु में भेद होता है और जहाँ पर एक ही वस्तु में कोई भेद से आप प्रतीति हो रहा है उसको कहेंगे वैशिष्ट वो भेद नहीं कृष्ण नारायण राम इत्यादि में कोई भी तत्वतः भेद नहीं है एक ही तत्व इसलिए दो प्रधान भेद है संप्रदाय क्या भेद है जिन्होंने उपास्य और उपासक को दोनों को एक मान लिया वो आश्रित संप्रदाय है वही अद्वैतवादी बाकी उपास्य और उपासना को उपासक को और उपासना तीनों को नित्य माना एक नहीं माना वो सब एक वैष्णव संप्रदाय है तो
हाँ
वो एक ही तत्व इसलिए इन संप्रदायों में जो वैष्णव संप्रदाय में तत्वतः कोई भेद नहीं है इन लोगों में रसतः और अद्वैतवादियों से इनका तत्वतः और रसगत दोनों प्रकार का ही तत्व ही भेद दोनों शंकराचार्य की दृष्टि से उपास्य और उपासक दोनों एक ही हैं ये लोग लीला को और जीव को नित्य स्वीकार नहीं कर एक ही मान और चारों संप्रदाय लोग उपास्य की दृष्टि से सभी एक ही तत्व को मानने वाले हैं ये उपास्य उपासक और उपासना तीनों को नित्य मान करके वैशिष्ट भेद मानते हैं वैशिष्ट मानते हैं किंतु है एक ही किंतु होने पर भी जहाँ भेद और अभेद होता है वहां पर भेद ही प्रबल होता है ये सब सांप्रदायिक रहस्य है इसको समझेगा वो संप्रदाय स्थिर बुद्धि का वो वैष्णव अनन्य उपास। तो अब इसके बाद में वैष्णवों में कुछ वैशिष्ट्य के कारण जो भेद दिखते हैं वो भेद तो नहीं है, वैशिष्ट्य है, किंतु इससे भी उपास्य के तारतम्य से उपास्य के की उपासना का जो तारतम्य और अनुभूति होती है इससे हम वैष्णवों में ये चार प्रकार ये वैशिष्ट्य देखते हैं। मध्व रामानुज विष्णु निम्बादित्य वल्लभाचार्य निम्बार्क ये सब एक ही के अंतर्गत में हैं, ये सभी वैष्णव संप्रदाय। किंतु इनमें क्या है, इनमें रसगत कोई भेद नहीं,
रसगत वैशिष्ट्य है।
उपास्य के उपकर्ष से तारतम्य है और इसलिए इनमें वैशिष्ट्य है, एक ही वैष्णव संप्रदाय। किंतु उनमें उपास्य के विचार हुए, यहाँ पर इस उपास्य का वर्णन किया गया है या सनातन गोस्वामी उपास्यगत वैशिष्ट को दिखला रहे हैं जो कई नहीं है।